ॐ नमस्तेभ्यः नमो ओरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लवे सर्वसाहुण एष सुरासुरमनुसिन्धुवन्दितं दोदघायी कम्बमलं प्रणमामि पद्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। 191 गाथा प्रवचन सार की चल रही है। ये कुछ गाथाएं कंठस्थ करने लायक हैं, कभी भी गुनगुनाते रहो। बहुत इसमें गंभीर भाव दर्शाए आचार्य ने। पढ़ते हैं अपन सामने आपके गाथा। प्रणाम होमि परेशिम प्रणामे परे संति नाणमहे मेको इदि जो झायदि झाणे सो अपाणम हवदि झादा। हरि गीत निकल पर तनो नहीं पर न मारा ज्ञान केवल एक हूँ जे एम ध्यावे ध्यान काले ते शुद्धात्मा बने। क्या अर्थ है गाथा का? नाम होमि परेशिम, ना मैं पर का हूँ, परे में ना संति पर मेरे नहीं हैं, ज्ञानम अहम एका मैं एक ज्ञान हूँ। इति या ध्यायति, इस प्रकार जो ध्यान करता है अपने ज्ञान में अपने को इस प्रकार से ध्याता है, पर की नास्ति और स्वयं की अस्ति, वो सब डिटेल आएगा इसमें। मैं एक ज्ञान हूँ ये बताया, मैं एक ज्ञान हूँ इस प्रकार जो ध्यान करता है वो ध्याता ध्यान काल में आत्मा होता है, ध्याता ध्यान काल में आत्मा होता है। हाँ ठीक, आप आएंगे। एक तो आप ऐसा दिमाग में रखो, ध्याता इज इक्वल टू ध्यान ध्येय ध्यायति, ध्याता इज इक्वल टू ध्यान ध्येय ध्यायति, एक साथ ही होते हैं। ध्यान वो ज्ञान की एकाग्रता, ध्येय किस पर, सवेरे ले चुके अपन त्रिकाली ध्याय 100 निरावरण आ गई थी ना बात उस, और उस पर उपयोग का टिक जाना जम जाना वो ध्यायति। कब टिकेगा? जब उसका पूर्ण विश्वास और अति सहकारी महात्म इसके ज्ञान में आ जाए, यही एक ध्येय है मेरा जिस पर मैं टिक करके जो चाहता हूँ प्रकट कर सकता हूँ। वो आचार्य इसमें बतलाते हैं टीका में, देखो जो आत्मा माने जिसको गरज हो शुद्धने से शुद्धात्मा की प्राप्ति का उपाय बताया जा रहा है। मात्र अपने विषय में प्रवर्तमान, एक एक शब्द देखो, मात्र अब अपनी बात करो, 100% स्वार्थी बनो, स्वय के अर्थी, स्वार्थ के सांचे परमार्थ के सांचे, सांचे सांचे बैन कहें सांचे जैन मती हैं, पर्याय बुद्धि नाही काहू सो विरोध नाही, ऐसा छंद है बनारसीदास जी का। आत्म गवेशी हैं, अजाचिक लक्ष्यपति हैं, दास भगवंत के उदास रहें जगत सो, सुखियां सदीव जीव ऐसे समकिति हैं। दृष्टि जिनको प्राप्त हुई, मोक्ष है ना, मोक्ष को अपन 5 प्रकार से कई बार लिया है, शक्ति रूप मोक्ष सबके पास है, उस शुद्धात्मा को कहीं मुक्त नहीं होना, सब में व्याप्त है व्यापक रूप से, हर जीव अपने शुद्ध जीवत्व भाव रूप शक्ति को लिए हुए त्रिकाल विद्यमान है, अनंत गुणों का पिंड के अंदर। और उसकी दृष्टि जब हुई अनुभूति के साथ, तो उसका नाम है दृष्टि मोक्ष, माने चौथा गुण स्थान। और यदि वो अपने में ही टिक गया, राग का अभाव होकर के वीतरागी हो गया, बारहवां गुण स्थान, उसका नाम क्या है? ये दृष्टि मोक्ष बारे में मोह मुक्त, और मोह से मुक्त हो गया वो जीव, अब पीछे नहीं जाने वाला। और तेरहवां गुण स्थान माने केवल ज्ञान की दशा, उसको क्या कहते हैं? जीवन मुक्त। अब लौकिक जीवन कुछ नहीं रहा, लौकिक माने साधना करना है, ध्यान करना है, वहाँ ध्यान का फल कहा, तेरहवें चौदहवें में ध्यान शुद्ध उपयोग का फल कहा, और अरंत अवस्था हो गई, जीवन मुक्त हो गए, और सिद्ध भगवान उनको कहा देह मुक्त, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध मानता, वहाँ तक की बात चल रही है। तो सबसे पहले जो आत्मा मात्र अपने विषय में प्रवर्तमान, क्या प्रवर्तमान? अशुद्ध द्रव निरूपणात्मक, अशुद्ध द्रव के निरूपण स्वरूप, जिसका ठेका है, जिसकी ड्यूटी है शुद्ध द्रव को संयोग संयोगी भावों के साथ मिला जुला करके उसको वैसा कहना, उसका नाम अभेद उपचार। अभेद का उपचार, ये जीव रागी है, ये दोषी है, क्रोधी है, मानी है, मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि, इसको अभेद का उपचार कहा आचार्य ने, ये सब डाला है। उपचार माने वास्तव में है नहीं, क्षणिक पर्याय को देख करके पूरे उसके जीव को कहा जा रहा है। जैसे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में टोडरमल जी सामने लिखा है ना, यह जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है। वो पत्र का जवाब दे रहे हैं ना, उनका जो प्रश्न आए थे स्वानुभूति संबंधी, तो जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है या जीव की अनादि से दृष्टि मिथ्या है? जीव की अनादि से दृष्टि ओंधी है, इस कारण से उस जीव को मिथ्या दृष्टि कह रहे हैं। जीव मात्र तो जीव है, और ये जीव सम्यक दृष्टि है। तो क्या दो तरह के जीव होते हैं? शरीरों के भेद से तो सुना है इस तरह से स्थावर, लेकिन ये भी तो लिखा है ये मिथ्या दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि। कहते जीव तो वही है, बस दृष्टि का फेर है। बाबू युगल जी युवावस्था में 26 साल की उम्र में पहली बार सोनगढ़ गए, वहाँ के एक जो विद्वान थे बाबू ज्ञानचंद जी कोटा वाले कहलाते थे, वो ले गए उनके, इनकी बुद्धि प्रखर देख के। और ट्रेन में ही लौटते हुए उन्होंने केवल ज्ञान केवल रविकरणों से पूजा लिख दी ट्रेन में ही। और जब कोटा वापस आए तो कुछ साथियों ने, जिनको कोई विश्वास नहीं था गुरुदेव के इस तत्व पे, नए नए उस समय तो फैल रहा था ना तत्व सब जगह, क्यों युगल जी आप गए थे, क्या मिला सोनगढ़ में? एक ही जवाब, सारे उल्टे घड़े सीधे हो गए, एक भी उल्टा नहीं रहा, सारे घड़े सीधे हो गए। फिर सब उल्टे धरे थे, कुछ भरते ही नहीं था उसमें, अब तो सब भरा हुआ दिखता और हरा भरा दिखता है पूरा, सब भर। ये है दृष्टि मोक्ष। माने पहले ज्ञान में निर्णयात्मक निसंकता आ जाती और आ जाना चाहिए अपने को, इतना सुनती दो एक चीज आगे चलते हैं। व्यवहार नहीं में उसके क्या बताया, उसकी परिभाषा अशुद्ध द्रव निरूपण करना। आप मनुष्य हैं, ये त्रियंश हैं, ये देव हैं, ये स्त्रियां हैं, ये पुरुष हैं, ये काले हैं, गोरे हैं, सुखी दुखी रंकरा, वो सब पर्यायों से उसके कथन करेगा। अथवा संक्षेप में कहें, व्यवहार का काम है जोड़ तोड़ करना। क्या काम है? जोड़ तोड़ करना। जहां पर कोई तोड़ नहीं वहां फिर भी तोड़ के भूलेगा, जहां कोई जोड़ नहीं वहां भी जोड़ के भूलेगा। गुण गुणी का खरेखर कोई भेद नहीं है, लेकिन आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है तो सातवीं गाथा लिखना पड़ी कुंदकुंदाचार्य को, समय सार में है कि नहीं? चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता है ज्ञानी के, चारित्र नहीं दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है, नहीं है यहाँ चौंक। तो तुम जैसा भेद मान करके बैठे हो, अभेद को तोड़ा उसने। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे आप तो हमारे हृदय में बैठे, हृदय में श्रद्धा रहती है भाई साहब, और ज्ञान कहाँ रहता है? दिमाग में। ज्ञान दिमाग में, श्रद्धा हृदय में, और चारित्र हाथ पैर में। तीन कंपार्टमेंट हैं आत्मा में, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के। अब इस अभेद अखंड वस्तु को समझाएं तो समझाएं कैसे? तो इतना तो आचार्य को करना ही पड़ेगा। यह सद्भूत व्यवहार, असद्भूत में कर्म, द्रव कर्म और शरीर, नौकर्म और बाहर के भी जितने भी ठट कर्म, दुनिया की भाषा में वे सब क्या हैं अरुण जी? वे असद्भूत व्यवहार में के वाच विषय, उनको जीव का बताया जाता है। तो संक्षेप में आचार्य जी ने कह दिया, अशुद्ध द्रव निरूपणात्मक व्यवहार नय में, अब एक संत कितना महत्वपूर्ण डाला, अविरोध रूप से मध्यस्थ रहकर, अविरोध विरोध मत करना। ज्ञानियों ने कहा है तुम मनुष्य ही हो, ढोर पशु नहीं हो। ये ज्ञानियों का व्यवहार सत्य भी गधे के सींग जैसा नहीं है कि है नहीं और कहा जाए। ख्याल में आ रही बात? चार गतियां हैं, चौर सब बताएगा सब। तो उसको आचार्य शब्द अविरोध रूप से, विरोध मत कर बैठना। आपसे पूछा जाए, अरुण जी आप आत्मा हो के मनुष्य? बोलो अनुज, मनुष्य नहीं हो, ढोर हो क्या? लड़ने आ जाए, दिखता नहीं इतना बड़ा। आचार्य कहते भाई अविरोध रूप से मध्यस्थ रहकर। आप संगी पंचेंद्री पर्याप्त हो के नहीं विजय भाई का पढ़िया है, कोई झूठ नहीं बोला जा रहा, लेकिन ये परमार्थ है क्या? ये तो बारदाने से नामकरण हो रहा है। मैं तो ये हर जगह बोलता रहता हूं, बारदाना समझते ना, बारदाना क्या होता, कोथली, बैग, बोरा, गुणी, कोथली, गुणी, बोरा, बारदाना। बोलो देवीलाल जी, तमें साखरनी गुणी जोई छे? आना जल्दी बोलो। नहीं देखी, इन्हें नहीं देखी। शक्कर का बोरा होता है कि नहीं? नितिन भाई होता है कि नहीं? आना बोलो। क्यों कहा जाता है? उसका भी हेतु हो, उस से ध्यान से सुनो। उसकी बनावट, बनावट इस किस्म की है जिसमें शक्कर ही रखी जाती है, और जिसमें नमक के डले रखे जाते हैं उसका, वो नमक का बोरा कहलाता है। आप कलकत्ता में बनते ना, वहाँ जूट बहुत होता है उस तरफ उसके, और कारखाना का नाम शक्कर के बोरा बनाने का कारखाना, तो वहाँ शक्कर कितनी मिलेगी? जरा क्या, जूट के ढेर मिलेंगे। फिर गलत लिखा है, गलत नहीं लिखा। ये बारदाना एक इंद्री का है कि दो इंद्री का, कि तीन इंद्री का, चार इंद्री का, पंच इंद्री का, संगी असंगी का, मनुष्य देव नार की त्रियंश का, आखिर तो बताना पड़ेगा ना। ये यहाँ तक अप्रोच रोड है इसका, व्यवहार का। इसलिए हम तो ये कहते हैं व्यवहार उपयोगी है, उपादेय नहीं है। और क्यों उपयोगी है? वो व्यवहार जो परमार्थ को दिखाए और परमार्थ को लेकर के चले, परमार्थ के लिए हो और परमार्थ को लिए हो, तो वो व्यवहार सद्व्यवहार कहलाता है। क्या करूं भाई परम? अब ये आचार्य कर अविरोध रूप से मध्यस्थ रहकर, मध्यस्थ हो जाए ठीक है, कोई कथन गलत नहीं किया। कोई बच्चे ने कहा हम संगी पंचेंद्री पर्याप्त है मनुष्य, ठीक है उसके लिए वो संयोग से बोल रहा है, लेकिन अब इससे अपना हित नहीं सधेगा तो आगे कहते हैं क्या शुद्ध। अब क्योंकि उसका हेतु पहले दे दिया ना, अशुद्ध द्रव का निरूपण करना, उसने पहले झंडा गाड़ दिया। मेरा काम तो मेल जोल करके, मैंने जोड़ तोड़ कहा था ना, अखंड में खंड भेद करके बताए, श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि के, और जो खंडित था बिल्कुल, देह जुदा शरीर, मैंने आत्मा जुदा, दोनों को एक करके कहेगा शरीर आदि से। तो ये सब काम, ये सब व्यवहार के जिम्मे, तो कहते उसके कथन में तू मध्यस्थ हो जा। अब शुद्ध द्रव का निरूपण करने का जिसका ड्यूटी है, जो अभी संजीव जी ले रहे थे ना, अरे कोई भी तुम कोई जेवर किसी शराब के यहाँ गिरवी रखने जाओ तो पैसा चाहिए, और आप बाहर खड़े हो और वो डिजिटल बैलेंस आ गए ना आजकल, और उसमें देखता है 50 ग्राम्स है या कुछ जितना भी 10 ग्राम्स है, 10 ग्राम 11 ग्राम का होता ना एक तोला जो बोलते अपने पुरानी भाषा, तो आजकल जो रेट चल रहा है तो आप समझोगे करे मुझे 30,000 नहीं तो 20-25,000 तो मिल जाएंगे 20,000। वो क्या करता है, किसको देखता है, क्या देखता है उसमें बताओ, वो आकार देखता है आभूषण आदि का, कुछ नहीं उसकी दृष्टि उस पर नहीं, किस पर जाती है, स्वर्ण धातु कितनी है मूल में स्वर्ण धातु कितनी है और कैसे परख लेता है, ट्रेंड है, अभ्यास करते हैं जो ज्वेलर्स की दुकान खोलते हैं बैठ करके चमक देखते हैं, कैसे देखते हैं, कसौटी का एक पत्थर होता है, कसौटी का पत्थर उसको घिसो तो उससे उसकी चमक की पहचान होती है कितना होना चाहिए, उसका अनुमान प्रमाण सही होता है तब वो सफल व्यापारी होता है ना ये बात, और उससे उसकी कीमत लगाता है, और वो कहे आपको तुम 10,000 से ज़्यादा दे नहीं सकते, इसमें तो बहुत कम है सोना, उसने कौन सी आँख से देखा, ऐसी परीक्षा प्रदानी होकर के देखो खरे कर हूँ कौन छूँ, हूँ कौन छूँ क्या थी स्वरूप छे मारू करूँ कौन संबंधी वलगणा छे राखूँ के ये परी हूँ, ऐना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो करया तो सर्व आत्मज्ञान न सिद्धांत तत्व अनुभव, ये है प्रारंभिक स्टेज, ज्ञानी की देशना सुनी और तर्क न्याय आगम से तर्क से युक्ति से अनुमान प्रमाण से बात को समझ लिया, और उसको प्राप्त की प्राप्ति चाहिए कि बात तो 100% सही है, तो उसके लिए कहते हैं क्या, शुद्ध द्रव का अनुरूपण स्वरूप निश्चय न्याय के द्वारा जिसने मोह को दूर किया है, आगे आएगा 200 नंबर गाथा में, इस आत्मा को कुछ नहीं हुआ मात्र मोह के कारण, मोह के द्वारा अन्यथा जाना माना जा रहा है, यह है महारोग नदि, अन्यथा जाना माना जा रहा है, चैतन्य का चैतन्यत्व को छोड़कर जो अनात्मत्व धर्म है राग द्वेष आदि जो निकल जाते हैं, सिद्ध भगवान को देखो तो छायक अवस्था और परम्पराणिक भाव, वो तो छायक तो वो तो मिल करके फिर एक में एक ही हो जाता है, लेकिन अपन ये कहेंगे सिद्ध अवस्था है तो छायक भाव, और अपने पास कितने भाव हैं, 3, एक तो कॉमन है परम्पराणिक भाव, उनको छायक ज्ञान, अपने को 6 उपसंज्ञान दर्शन भी, और तीसरा क्या अपने प्लस मोह राग द्वेष, तो बड़ा कौन होगा, 3 वाला के 2 वाला, 2 वाला बड़ा होगा, 3 है ज्यादा, तो ये जो आत्मा नहीं है पहले अनात्मा कैसे सिद्ध करेंगे, आगे बतलाते हैं, मोह को दूर किया निश्चय ने के द्वारा, क्यों निश्चय ने की आंख से देखेगा तू तो तेरी दृष्टि उसके मूल स्वभाव पर जाएगी, स्वभाव से कहते जिसका कभी अभाव नहीं होता, और जिसका अभाव हो जाए वो विभाव होता है, स्वभाव नहीं होता, स्वभाव कभी पराधीन नहीं होता, पराश्रित नहीं होता, आधा अधूरा नहीं होता, बेहद अनंत ही होता है और अनादि अनंत होता है, ऐसा जिसको ये निश्चय ने की आंख से दिखाते हैं आचार्य देव वो देख पाता है, तो ये बात कहता है मोह को दूर क्या माने, अरे ये सब तो क्या था, ये सब गोरख धंधा था, ये वास्तविक नहीं है, मेरा स्वरूप कुछ अलग है, ऐसा होता हुआ मोह को दूर होने पर क्या होता है, हाँ ये 2 के लिए भाई साहब, मुख्य रूप से तो मिथ्या दृष्टि के लिए है जो समय दृष्टि बन रहा है, मोह को दूर जिसने कर दिया वो हो गया, लेकिन उसकी मान्यता कैसी होती है कि जिसने ज्ञानी की देशना सुन के व्यवहार निश्चय नए के अभिप्राय को पकड़ लिया, तो उसके लिए उपदेश है, जो आत्मा लिखा है ना, जो आत्मा मात्र अपने विषय में प्रवर्तमान, जिसको अपना हित साधना वो पहले लिख दिया, अगर सम्यक दृष्टि का तो वो नहीं लिखते फिर जो आत्मा, वो तो हो गया उसका काम, जो आत्मा मात्र अपने विषय में प्रवर्तमान दोनों पे जाएगा, और आप देख लेंगे अपने गुरुदेव श्री का, जिसको अपना क्या बोलते रोग मिटाना हो जन्म मरण का, तो तो निश्चय व्यवहार के सारे कथनों को सुनकर सम्यक दृष्टि का तो दृष्टि रोग चला गया। तो ये कहा कि ये अविरोध रूप से मध्यस्थ रहकर ये किसको उपदेश है, जिसको ज्ञानी की देशना से निश्चय व्यवहार का स्वरूप ख्याल में तो आया, लेकिन प्रकट प्राप्ति के लिए बात मुख्य है इसमें। मैं पर का नहीं हूं और पर मेरे नहीं है, ज्ञानी को तो पता ही है ये चीज, ज्ञानी को तो ये पता ही, और ज्ञानी बोल रहा है, ये उपदेश दे रहा है किसको। सचमुच में ज्ञानी के वचन ही प्रवचन होते हैं, देवध्वनि ही सर्वोत्कृष्ट वचन, गणधरादि अज्ञानी के वचन प्रवचन नहीं होते। अगर अज्ञानी का ज्ञान ज्ञानियों की तरह अपनी तरफ से कुछ भी मिलाए जुलाए बिना आगमानुसार तर्क न्याय से सिद्ध करता बोलता है तो उसके वचन भी उपचार के उपचार से प्रवचन कहे जाएंगे, कहे जाते हैं। आचार्यों ने जितने दृष्टांत दिए हैं इसमें वे त्रैकालिक सत्य को स्थापित करते हैं, हम लौकिक दृष्टांत दे देते हैं वो तात्कालिक है। जितने भी दृष्टांत मिलेंगे आपको आचार्यों की टीकाओं में, 100 वर्ष पहले पढ़ो बाद में पढ़ो, हजार वर्ष तो हो ही गए अमृतचंद्राचार्य, लेकिन वो अकांठ होते कभी भी कोई पढ़े। तो इस प्रकार से मैं पर का नहीं हूँ पर मेरे नहीं है, इस प्रकार स्वयपर के परस्पर स्वस्वामी संबंध को छोड़कर कौन छोड़ेगा, जो छोड़ चुका सम्यक दृष्टि उसका उपदेश चल रहा है और उसमें बातें चली शुरू से, शुद्ध नय से शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, अशुद्ध नय से अशुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। 190 गाथा में कहा था, 191 कह रहे हैं, शुद्ध नय की आंख से तू देख अपने स्वरूप अस्तित्व को। नय क्या है, अपने ज्ञान की पर्याय। मैं पर का नहीं हूं पर मेरे नहीं है, इस प्रकार स्वयपर के परस्पर स्वस्वामी संबंध को छोड़कर। गुरुदेव श्री ने तो आज बहुत खुलासा किया था कौन किसका है जगत में, पिता पुत्र पति पत्नी आदि सब लिए थे ना आज गुरुदेव, ये तो दूर की बात जाने दो। यहाँ अगर हम ये कहें कि एक 30 सेकंड के लिए आधे मिनट के लिए आप चरम चक्षु बंद करके अंदर में ज्ञान चक्षु खोल के देखो, खरे कर हूँ कौन छू, अथवा मेरे पड़ोस में कौन बैठा है, चलो इधर से देखो क्या दिखाई देगा, उल्लास भाई आपके पड़ोस में कौन बैठा है, चलो ऐसे देखते ही बोलो 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 तो सही, अपन क्लियर कर, एक साइड में रजनी भाई एक साइड में शैलेश भाई, बिल्कुल गलत जवाब, यही तो हो रहा है। असली मैं के बाजू आजू में कौन है, वो मैं हूं वो पकड़ना, इसलिए मैं इसकी वकालत क्यों करता हूं कि बुद्धिपूर्वक तुम पढ़ के सुन के एकांत में विचार करो। ये सविकल धर्म ध्यान लिया है, तत्वानुशासन में लिखा है बार बार, ये प्राप्त की प्राप्ति के लिए। अभी सच्चा ध्यान तो अनुभव के साथ ही प्रकट होगा, करण लब्धि और कुछ नहीं है, ध्यान की ही प्रक्रिया है पूरी। उपयोग शुद्धात्मा का अवलंबन करता है और सविकल स्वसंवेदन होता है। वो पूछ भी रहते ना आप डॉक्टर से, 3-4 लोग पूछे पहले गुणस्थान में कैसे आप शुद्ध उपयोग करें, भैया सबके लिए नहीं होता, ध्यान से सुना करें। करण लब्धि में जो जीव आया सविकल स्वसंवेदन है, और अपूर्व करण में जो आ गया उसको भाव जिन संज्ञा दी है गौड़ सार की शायद पहली गाथा में, या खुद हम लोगों ने देखा था उज्जवल, क्योंकि वो नियम से आगे बढ़ने वाला है और अनिवृत्तिकरण परिणाम के बाद नियम से अविकल्प स्वरूप की प्राप्ति अनुभूति होती है, लिखा है चरित्र। अभी इसमें बता भी देंगे हम, इसमें ही लिखा 80 गाथा की जयसन आचार्यदेव की टीका में, हम अभी बताई देते हैं, चलो निकालें अभी बोलो इसमें ही से, पर वही हमको हेल्प तो लेना पड़ेगी निकलना रे भैया। 80 गाथा की जयसन आचार्यदेव की टीका, मजा आ जाएगा। यही चीज़ें जो क्लैरिटी मांगती हैं, स्पष्टता मांगती हैं। पेज 140 था उसमें, 141 हो आ गया, 140 जैसा चाहते की टीका। हाँ अब इसके बाद ये तो अपना ट्रीटमेंट 80 गाथा की चल रही ना टीका, नहीं और आगे 79 पूरा हो गया। हाँ ये इसमें देखना, ये जो अनंत को जानता उसमें इसमें आना तदन्य था केवल ज्ञान आदि विशेष गुण अस्तित्व आदि सामान्य गुण और क्या लेगा परमोदारिक शरीर आकारेण यद आत्म प्रदेशानाम अवस्थानम सब व्यंजन पर्याय अनंत ये सब लेंगे समझे ना, इसमें बहुत क्लियर किया। और अगुर लघु गुण संबंधी वो सब सठ स्थान पतित आदि ये अर्थ पर्याय इसके आगे लेते हैं। और उसके एक एवं लक्षण गुण पर्याय आधारभूत अमूर्तम असंख्यात प्रदेशम, ये जो अमूर्त और असंख्यात प्रदेशी आत्म तत्व ने अनंत भगवान का अवांग ले लिया। इसके बाद अगले पेज पे संस्कृति का बस बस ठीक है। हाँ ये क्या लिखा हुआ पर? हाँ इत्थम भूतम द्रव गुण पर्याय स्वरूपम पूर्व और अध अभिमाने, मैं इसमें निकाल लेता हूँ मेरे को आप पढ़ेंगे इतना डंके की चोट लिख रहे हैं आज और ये बिल्कुल सही लिखा है। देखो इसमें पेज 142 है, इत्थम भूतम द्रव गुण पर्याय स्वरूपम, इस प्रकार द्रव गुण पर्याय के स्वरूप को कठिन नहीं है भैया संस्कृत थोड़ा सा उपयोग लगाओ सब ख्याल में आएगा। पूर्वम अरहद अभिधाने परमात्मनि ज्ञात्वा, जो पूर्व में हमने अरंत भगवान का स्वरूप बतलाया ऐसे अरंत परमात्मा को जानकर पश्चात निश्चय नयेन मिल गया पश्चात देख लो एक बार क्योंकि फिर तो फिर गए तो फिर कौन खोलता है। पश्चात निश्चय नय के द्वारा अभी बात आई थी ना इसमें निश्चय नय शुद्ध नय के द्वारा शुद्ध द्रव का निरूपण करने वाले निश्चय नय के द्वारा तद एव आगम सार पदभूतियाँ, पूरे द्वादशांक का आगम का सार है अध्यात्म भाष्या। देखो लिखा उसमें अध्यात्म भाषा से कहा जाए तो निःशुद्धात्म भावना अभिमुख रूपेण, निःशुद्धात्मा के अभिमुख हुआ जो उपयोग सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञानेन, वो सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान वहाँ प्रकट हो गया उसको कैसे आगे लिखते हैं तथा एव आगम भाषा। अब इसको आगम की भाषा से सुनो इसको क्या कहेंगे, लिखा है इसमें रजनी भाई अधाकरण अपूर्करण अनिवृत्तिकरण संग नाम है जिनके करण लब्धि के तीन भेद ये नाम वाले दर्शन भोज छपण समर्थ प्रणाम विशेष बले, दर्शन भोज का छपण छह करने में समर्थ ये परिणामों के बल से विशेष बल से पश्चात आत्मनि योजयति, पश्चात वो उपयोग आत्मा में जुड़ जाता है जोड़ देता है। लिखा है भैया शैलेश भाई करण लब्धि में होता है, में होता है। उसके पहले नहीं होता संवेदन नहीं है उसके पहले। अपन ने एक बार दृष्टांत चर्चा की थी ना वो उदाहरण और भी दे देता हूँ। हाँ कोई हिरणी भीषण गर्मी में बछड़े को जन्म दे के मर गई, उदाहरण बनाया था हम लोग चर्चा करते थे ब्रह्मचर्य हरि भाई वगैरह तब का याद है। अब वो बछड़ा तो बेचारा ना माँ का दूध पीने को मिला ना पानी और तड़फ रहा है धूप धूप एकदम काल में तो इधर उधर भागता है कहीं कुछ नहीं देता, वो मृतक कलेवर पड़ा है हरण का बहुत चौकड़ी फाँता आता है ऐसा 24 घंटे निकल गए फिर कुछ समझ गया कि यहाँ कुछ नहीं है तो कहीं एक दिशा में भागा, वहाँ से कुछ ठंडी हवाएं आई। नितिन भाई तो कैसा लगेगा अल्लाह से इसको वेदन तो होगा ना उसको क्योंकि तीव्र गर्मी के बाद बरसात शुरू होती है तो कहीं पर पानी बरस गया बरस रहा है समझो तो एकदम ठंडी हवाएं फिल हुई तो उसको कैसा लगेगा वहाँ अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो उधर ही छलांगे भरेगा उधर ही जाएगा और जाते जाते वहाँ देखा जलाशय है तो पानी पी लेगा नाम भी नहीं जानता। तो ये जो जिसको टोडरमल जी ने लिखा है सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान पढ़ो आप उसको बार बार गुरुदेव को है ना उसमें कौन सा अध्यात्म संदेश पूरा इसी विषय को खोला है रसमुण चिट्ठी अरे गजब का है उसको तो इतने बार पढ़ो उतना ही तुमको वो बताएंगे वो मूल प्रयोजन की सिद्धि है। तो उसमें सविकल्प से सम्यक दृष्टि भी यह मैं भिन्न ऐसे विकल्प से अंदर में यह मैं अपने आत्माश्रित गुणों का भी प्रतिपादन करता उपयोग इतना उसका समाविष्ट होता है उसको रोमांच हो जाता है वो रोमांच अलग टाइप का है पहली बार होगा वो अलग टाइप का है ख्याल में ना और उसके बाद शुद्ध चिन्मात्र वस्तु भासने लगती है और अति निरस्मान हो जाता है।
उसमें प्रणाम मग्न करके वो तो फिर बोल लें तो बहुत ही विशेष है। यही प्रोसेस यहाँ बता रहे जो कहते ना, देखो करण लब्धि कौन सा गुणस्थान है संजीव जी? पहला गुणस्थान। पहले गुणस्थान में सविकल स्वसंवेदन हो रहा है कि नहीं? तेजानी जी लिख रहे कि नहीं? करण लब्धि वाला जीव रिटर्न बैक नहीं होता। वही जीव करण लब्धि में जा सकता है, जाता है, जो अंतर्मूर्तवा गारंटी से आत्मानुभव लेने वाला होता है, मरण भी नहीं होता। करणादि बोल रहे तो ये सविकल स्वसंवेदन ज्ञानीन लिखा है ना। फिर आगम भाष्य अदा प्रवृत्तकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण संग दर्शन वो छपन समर्थ परिणाम सेलिब्रेट। क्या सब डाला थी? दर्शन वो को उपशम की बात नहीं ली, दर्शन वो का छपन छह कर डाले इस समर्थ व सामर्थ वाला परिणाम। अरे बाजे नगाड़े बजते हो तो भी उसका डाइवर्ट नहीं होगा उपयोग। तो ध्यान करना पड़ता है। क्या होता है भाई साहब, पहले कह दिया अगर आत्मा का महात्मा आया तो उपयोग उधर झुकेगा, वो एक अपेक्षा, और नहीं झुकाओगे तो चार लब्धि तक अनंत बार आ गए, फिर किसी काम में उलझ गए। इसको सर्वोत्कृष्ट प्रायोरिटी पे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको रखना पड़ेगा। और जिसके लिए हमको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, आप देखेंगे कलश टीका में 20, 21, 22, 23 कलशों तक और 127 कलश आदि, कथमपि कथमपि कथमपि, और 23 कलश में तो अमृत चंद्राचार्य कहते हैं मर करके भी अनंत बार जन्म मरण का यहाँ लिखा हुआ है भाई। कथम अभी मृत्ता तत्व को तो लिशन, ये गोल्डन चांस फिर नहीं मिलेगा। आज ही मानो काले मानो अनंत काल पछी मानो एक हो तरण काल में परमार्थनो पंथ। और इसके बाद फिर 34वां कलश ब्रह्म किम पर्यण कार्य अकार्य कोलाने, बहुत कहने से भ्रम कर बहुत समझ लिया द्रगुण पर्याय सब एम छे और एम छे इसमें नहीं मिलता और उसमें पर्याय नहीं गुण नहीं। अरे समझ करके उसका समझ में तो ये अपना कार्य कर ले। स्वयमति स्वयमपि निर्भता सन पश षडमासमेकम, 6 महीने तू एक टाइम निकाल अपने जीवन में, अनंत काल तो घुमा दिया। हृदय सरसी पुनसाम पुद्गलात भिन्न धामनो ननु किम अपना उपलब्धि भवती किंचो उपलब्धि, कि प्रभु मैंने ऐसा किया तो उपलब्धि होगी कि नहीं होगी। तो बनारसी दास जी का छंद है, भैया जगवासी तू उदासी हो के जगत सो, एक 6 मास मेरे उपदेश मान रहे और संकल्प विकल्प के विचार तक बैठ के एकांत मन एक ठोर आनु रे, इतना तो काम कर लिया। संकल्प विकल्प के विचार तक ये गुण भेद प्रेम में आत्मा हूं क्या रे, समझ लिया ना। उसको कहते हैं समझ लिया तो तेरा उपयोग अब उसकी ओर दौड़ना चाहिए प्राप्त की प्राप्ति के लिए। संकल्प विकल्प के विचार तक बैठ के एकांत मन एक ठोर आनु रे, तेरे घट सर तामे तू ये कमल वाको, एक समुद्र द्वारा है शांत शांत उसमें कमल तू ही है, तू ही मधुकर है सुभाष पहचान रे, तू ही भौंरा है सुभाष पहचान तो सही अपनी, मैं हूँ कौन और कहाँ रखड़ रहा हूँ। और फिर लिखते हैं वो लास्ट लाइन का अनुवाद किया, प्रापति ना हो है कछु ऐसो जो तू विचारत है, सही हो है प्रापति स्वरूप यूं ही जान रे, गारंटी दे रहे आचार्य दे रहे। 200 गाथा में कही थी मैं है मोक्षाधिकारी, अरे 5वीं गाथा में समय सार में दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल ग्रह स्थल न, है ना। इतनी सरलता, कोई शब्द कहाँ लगा चुके, तू तो अपना काम कर ले। जिसने इसके लिए कमर कसी है इसलिए गुरुदेव कहते हैं महाराक्षस सूरानो कायरनो नहीं काम, गोष्ठियाँ चलती रहे सब तो अपना ज्ञान परिमार्जित होता रहता है। सर्वार्थ सिद्धि की देव 33 सागर तक तत्व चर्चा करते हैं, गुणस्थान नहीं चढ़ता बढ़ता, उनके पास क्या त्यागना है, कोई संयोग है बाहर का, कुछ भी नहीं। ये चीज़ें खोज की हैं कि क्यों नहीं ऐसा होता, उतनी उनकी वो रहती है। और असंख्यात छायक सम्यक दृष्टि, पहले दूसरे तीसरे नरकों में तीर्थंकर प्रकृति वाले बैठे हैं और लड़ रहे हैं आपस में, गुणस्थान चौथे ही। आज ही मेरे को प्रश्न आया जब मैं इधर आ रहा था भोपाल से, पूछ रहा था एक ब्रह्मचारी रावण उधर का आमाय कि भाई साहब वो दोनों एक से लड़ रहे हैं तो क्या उनके योग में काय में फर्क होता है? तो मैंने कहा देखो आत्मानुशासन में एक दृष्टांत दिया है, एक सिंह और एक शूकर लड़ते हैं, दोनों मर जाते हैं,
किसी ने लड़ रहे थे पता है ना कहानी, एक मुनिराज को खाना चाहता है और एक बचाना चाहता है। जंगली सुअर होते हैं ना उसके बड़े बड़े सिंह तो लड़ मरते हैं, सुअर मर करके स्वर्ग जाता है और वो शेर मर करके नरक चला जाता है। क्यों? अकेले बाहर का योग नहीं। आप ये समझो कि जो छायक समय दृष्टि नरक में लड़ रहे हैं, आप बोलते थे ना गंगवाल जी छायक छायक भी लड़ रहे हैं, तो परिणाम ही ऐसे होते हैं वहाँ पर नरक, क्या करोगे तुम तो ये तुम भी समय दृष्टि तो बैठने नहीं देंगे चैन से, परिणाम इस जाति के हो जाएंगे। तो क्या होता है अगर मिथ्या दृष्टि नारकी और सम्यक दृष्टि नारकी दोनों लड़ रहे हैं तो एक को 41 प्रकृतियों का आश्रय बंद नहीं हो रहा है। बोलो भैया उन प्रकृतियों को जड़ प्रकृतियों किसने समझा दिया इसको बंधना इसको नहीं बंधना? ये डिफरेंस है भाव योग का और अंदर में अभिप्राय का, पूरा इसकी बंध की फिलॉसफी भी पूरे समझना पड़ेगा। और इसमें हम पहले बता चुके हैं 45वीं गाथा में जिसको गुरुदेव को लोग बहुत वो कहते नहीं लिए कैसे कहते, उसमें लिखा है औदिक भाव बंध के कारण होते हैं और अंतों का भी अघाती का उदय चल रहा है उनको बंद होना चाहिए। वो बता देंगे अभी ये पूरा कर दें, एक मिनट रह गया। ये देखना कर्ण लब्धि में प्रवेश क्या हुआ, तत्पश्चात आत्मानम योजति। अब इसके बाद शब्द देख लो आप, तदनंतरम अभिकल्प स्वरूपे प्राप्ते। उसके बाद क्या होता है जुड़ते ही तदनंतर, कोई बीच में कोई डिफरेंस नहीं, क्या प्रकट होता है अभिकल्प स्वरूप की प्राप्ति होती है। अभिकल्प माने निर्विकल्प। तो एक सज्जन बोले मित्र पक्ष के शुद्ध उपयोग नहीं लिखा क्या करो, तो हमने कहा इसके पहले हमने पढ़ के बता दिया ना इसी टीका के प्रारंभ में अच्छत्ता पापारंभम इत्यादि सूत्रण यदुक्तम, पीछे जाओ तो आपके मिल जाएगा। शुद्धोपयोगा भावे मोहादि विनाशो न भवती, और मोहादि विनाश भावे शुद्धात्म लाभो न भवती, लिख तो रहे शुद्ध। और 181 गाथा जो सवेरे पढ़ के बताई थी तो पूछ रहे थे पहले में कैसे, ये करण लब्धि में उपयोग शुद्धता का अवलंबन ले रहा है शुद्ध स्वभाव का, इसलिए सभी कल्प स्वसंवेदन सिद्ध किया आचार्य लिखा था ना वहाँ मिथ्या दृष्टि से लेकर छीण कसाय गुणस्थान तक अशुद्ध निश्चय की दशा में शुद्धोपयोग की प्राप्ति कैसे होती है। तो क्या हेतु दिए आचार्य ने जयसनाचार्य ने, वस्तु की एक देश परीक्षा करना उन्नय का लक्षण है और शुभ अशुभ शुद्ध द्रव का अवलंबन लेना उपयोग का लक्षण है। उपयोग कभी भी निरावलंबी नहीं होता, उपयोग तो कोई ना कोई उसके उपयुक्त रहेगा। ज्ञान गुण की पर्याय हो लेकिन गे कोई नहीं हो उसमें, इज इट पॉसिबल? ये बिल्कुल ऐसा है अग्नि बिना ईंधन के देखी, लेकिन ईंधन अग्नि नहीं और अग्नि ईंधन नहीं है, गाथाएं भरी। ऐसे गे गे है और ज्ञान ज्ञान है, एक ने भी भेद बता देते। तो वहां सिद्ध किया शुद्धात्मा का शुद्ध, शुद्धात्मा का अवलंबन होने से शुद्ध ध्येय होने से शुद्ध साधक बना होने से शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होती है। और यहाँ लिखा अभिकल्प स्वरूप की प्राप्ति। अभी 2-3 दिन पहले गुरुदेव श्री का निकल गया प्रवचन सार भी चल रहा था उनका, ये तो अभी क्रम में अपने इसमें बदला है 248 गाथा, उसमें देख लो आप, उसमें लिखा है शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी चर्चा की। तो लिखा श्रावकाणम अपि सामायिकादि काले शुद्धोपयोग वर्तते क्वापि काले, और मुनियों के बहुत ऐसे शुद्धोपयोग रहता है क्वापि काले शुभोपयोग लिखा है, माने उनका छठा सातवां वो भेद ही नहीं गिनते। मुनिराज शुद्धोपयोगी कहलाते हैं और श्रावक चौथे पांचवे वाले शुभोपयोगी कहलाते हैं बहुपद की प्रधानता होने से, कि आम बाड़ी आम आम के झाड़ उसमें एक लीमड़ा का है एक दूसरा इमली का है इमली जो भी बोलते तो भी वो बहुत अच्छे उसका नाम पाता है, सब लिखा है।
सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान कौन
सा लिखा है? सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान वो भाव श्रुत ज्ञान ही है।
कौन सा तत्व
में आएगा सोचो सभी, अच्छा प्रश्न है। गुणस्थान पर बहुआ ही पूछ रहे हैं, वो जो सविकल्प स्वसंवेदन ज्ञान है उसको कौन सा तत्व कहें?
तो अभी अरुण जी लेके गए ना 144 गाथा, मति ज्ञान तत्व और सुरत ज्ञान तत्व को सन्मुख किया है, तत्व नाम दिया ना, यानी कोई विशेषता बतला रहे हैं, उसमें स्वरूप का संचेतन सभी कल्प में होना शुरू हो गया। हाँ वो ले रहे हैं उसमें, बोलो चलो आप सब विद्वान सोच। उस क्वालिटी का परिणाम वहाँ 34 बंधा शरणादि हैं, एक प्रकार से वहाँ संवर में डाला है। देखो संवर में क्यों डाला, 41 नहीं क्यों है? कितना है 41, वो तो बाद में होता है, देखो यही चालू हो जाता है, हाँ यहाँ चालू हो जाता है, हाँ ऐसा है सब लिखा है, हाँ नहीं बंधा रुक गई, सब सब रुक जाता है, सब बहुत कोई मामूली चीज नहीं। देखो ऐसी चर्चाएं ऐसा ये गोष्ठी हो तो बहुत आनंद आता है। चलिए अभी क्या इसमें बता रहे थे, ये बात आ गई,
श्रवण बेल बोला थे क्या विद्वत्सल गोष्ठी में,
हम थे ना,
वो कहा तो था उन्होंने शिवचरण लाल जी ने, मैन परिवार ने पहले गुणस्थान में सिद्ध किया इसको,
पहली बार बोला है उन्होंने इतनी भरी सभा में, पहले कहा अब तो घोर विरोधी रहे स्वामी जी के ना, सबके सब कुछ है उत्तम सम्यक दर्शन है ऐसा बोले, यहाँ जितने आए सब कुछ है उत्तम सम्यक दर्शन है बोले थे, और डॉक्टर साहब के बोलने के बाद पहले दिन शायद आप थे कि नहीं वो चर्चा में, वो कौन थे वो दूसरे विद्वान, श्रेयांश 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 शीतलचंद जी नहीं श्रेयांश, अब डॉक्टर साहब ने बोला शुद्धने की व्याख्या से आत्मा की शुद्धता, सब लाइन से बैठे थे हम परमात्मा और अभय जी वगैरह सभी के लिए, आप थे ना उसमें, आप थे तो उस दूसरे साइड, अब वो सिद्ध करने लगे श्रेयांश, नहीं आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, केवल ज्ञान वरण कर्म के छह के बिना तीन काल में केवल ज्ञान नहीं होता, बोलो गलत कैसे, चले भाई भरी सभा उसमें लिमिटेड लोग थे विद्वान, तो डॉक्टर साहब ने कहा भैया हमने नए लगाए, आपने नए लगाए कि नहीं, कोई मैं कह रहा हूँ शुद्धने की आँख से देखो, आत्मा को बंद ही नहीं होता, स्पर्श ही नहीं करता, ये भी कोई आँख कभी पड़ी है लोगों ने देखी है क्या, परम भाव ग्रह शुद्धने थे, लेकिन मेरे से नहीं रहा गया, मैंने टोक दिया ऐसा कर, जैसे सामने बैठे थे बोला क्या क्या, मैंने 100 नंबर की गाथा देखी श्री अनुसार जी डॉक्टर साहब, जीवो अड़ेव करे दी घड़म अड़ेव पटम अड़ेव शेष के दब्बे योगो को योगा पाद गया अवधि तेसुन कत्ता, अगर तुम निमित्त निमित्त संबंध से कर्ता मानते हो तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, और यदि व्याप्य व्यापक भाव से कर्ता मानते हो तो चेतन को जड़ हो जाना पड़ेगा, जड़ को चेतन हो जाना, चुप हो गए कि किसी को इतना गहरा कोई अध्ययन ही नहीं है, मैं कहता हूँ गुरुदेव की बराबरी वाला मत कोई अभी दिखाई नहीं देता, हृदय से कहता, एम ए पी एच डी थे वो आप जैसे, कौन गुरुदेव गुरुदेव कर लो कितनी पी एच डी है कर, अरे अंदर की जिसकी हो गई चीज, लेकिन जो ये पकड़ रहा है समझ रहा उसका भी उज्ज्वल भविष्य आ रहा है, जो भी सुन रहा है, चलिए एक एक बात यहाँ कहाँ कह रहती है, तो होगी ना तद अविकल्प स्वरूप प्राप्ति। अब इसमें अपन आते हैं जो थोड़ा से ले रहे थे 191 गाथा, तो आपने पूछा किसके लिए, हमारे हिसाब से उसी जीव के लिए जो सुन करके बिल्कुल तैयार हो गया है, शुद्धने अशुद्धने के विषय को समझा दिया आचार्य ने, अब वो कहते हैं भैया अब तुम अशुद्ध द्रव का निरूपण करने वाला व्यवहार के विषय में तू चुप हो जा, अविरोध रख विरोध मत कर, वो सब कथन व्यवहार सापेक्ष सत्य हैं, व्यवहार सापेक्ष सत्य हैं, गधे की सिंगड़ा जैसा असत्य नहीं है, बस इतना, अब तुझे अपना काम करना है तो शुद्ध द्रव के निरूपण स्वरूप निश्चय ने के द्वारा जिसने मोह को द्वार दूर किया है, निश्चय ने के द्वारा मोह को दूर किया है मतलब जिस ज्ञान ने ज्ञायक को मोह रहित देख लिया है, पकड़ लिया है, जान लिया है, तो कथन में तो यही शब्द आएंगे, और क्या किया उससे क्या होता है, मैं पर का नहीं हूं पर मेरे नहीं है, और क्या हुआ इस प्रकार स्वयं पर के स्वयं और पर, स्वयं और पर अन्य जितने भी हैं दो ही गए हैं जगत में, स्वयं गए और पर गए, बाकी सब पर में स्वयं को छोड़कर, तो वो कह रहे हैं स्वयं पर के परस्पर स्वयं स्वामी संबंध को छोड़कर, स्वयं स्वामी संबंध वहां कहलाता है जैसे मैं बोलता हूं, आप अंगूठी पहने हैं ना संजीव जी, सोने की है ना, हम ये कहेंगे ठीक है ना, सोने की ये अंगूठी किसकी है, सोने की है संजीव जी की, पहले बताओ बोलो किसकी है नितिन भाई, हैं
अच्छा कौन से नए से, हम तो आपसे पूछ रहे हैं किस, ये तो सोचना आपको है, है? संजीव जी की है। अब संजीव जी ने शैलेश भाई को दे दी, अब किसकी हो गई? सोने की अंगूठी सोने की रहेगी कि कुछ बदल जाएगा? जो बदल रहा है वो सब व्यवहार समझा रहा है बस, कि उसमें अविरुद्ध रूप से मध्यस्थ है। मूल तत्व का कभी नाश होता नहीं, ये जिनेंद्र वचन जो है ये बात है। ये आपकी अमेरिका की याद आ गई, एक मिनट दो मिनट ले रहा हूँ। सन 2002 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कोई है ना, वहाँ पर बहुत बड़ा सेमिनार हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, उसमें साइंस के बहुत आते थे, मैं कभी कभी देखा करता था, और वो उसका छोटा सा हिंदी में भास्कर में भी छपा था, कटिंग भी रखी थी मैंने। एक साइंटिस्ट ने वहाँ प्रस्तुत किया पेपर, देर इज नो बिगनिंग ऑफ टाइम नो एंड ऑफ टाइम, ना काल की आदि ना काल का अंत, उसने पूरे दमखम से प्रस्तुत किया। मैंने फिलॉसफी और साइंस दोनों का मिक्सिंग कुछ चला वहाँ पर, तो दूसरे ने उसको सपोर्ट करते हुए कहा, फ्रॉम केमिस्ट्री फार्मूला देर कैन नॉट बी एनी सो कॉल्ड इमेजिनरी गॉड, बिकॉज नो एटम कैन बी क्रिएटेड एट ऑल, नो एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड एट ऑल, इट मीन्स वॉट एवर इज एग्जिस्टिंग इट इज सेल्फ एग्जिस्टिंग फ्रॉम बिगिनिंगलेस विल कंटिन्यू एग्जिस्टिंग फॉर एंडलेस। जो कुछ एक परमाणु भी ना पैदा किया जा सकता है ना नाश किया जा सकता है, इसलिए इसका कोई बनाने वाला हो नहीं सकता। अवस्थाएं पलटता है, ये जो समय सारे ना जिसकी प्रस्थान मेरे को बाबूजी ने लिखवाई, उनके उसमें मैंने अपनी तरफ से वो फार्मूला डाला है केमिस्ट्री का, BaCl2+H2SO4, बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा? BKGN, Ba2SO4 2HCl, कौन सा परमाणु नष्ट हुआ? कोई नहीं, सिर्फ कंपाउंड की स्टेट चेंज होती है। सो देर कैन नॉट बी इमेजिनरी गॉड एनी वियर। 35 जैन आपके, वो आप लोग जानते होंगे, हिंदुस्तान में सन 2005 से एक समर स्कूल फॉर जैन स्टडी चलता है, और अमेरिका के रिटायर्ड वो हैं सुगन चंद जैन, वो लेते हैं, तो मुझे 2-3 बार बुलाया। एक बार मंगलायतन में 2006 में, 2007 में जयपुर, तो जयपुर का किस्सा मुझे याद है, ऐसे ही सब लोग बैठे थे, 35 देशों से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जो नॉन माने अंग्रेज लोग, और जैन फिलॉसफी पढ़ रहे गहराई से। तब वहाँ पर उन्होंने एक एन के जैन है जो कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं आजकल राजस्थान में, पहले वो चीफ जस्टिस थे कर्नाटक और तमिलनाडु में, तो डॉक्टर वो सोगानी, हाँ वो कंडक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला, हेमचंद जी आपके पहले 5-7 मिनट ही बोलेंगे, ठीक है, हर एक को टाइम दिया हुआ था, सबके सामने माइक रखा, कोई पूछ सकता है, तो उन्होंने बोला, वास्तव में भगवान तो एक है, वीर बुद्ध हरि ब्रह्म सब शुरू कर दिए, गॉड इज वन, और बोलते चलेगा कुछ। तो मैंने उनकी तरफ देखा, 2 मिनट बोल लें तो जैन होकर के, सब भगवान तो एक ही है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, ये हो सकता है, ऐसा सब बोले। तो कमलचंद जी सोगानी बोले उनसे, मैं थोड़ा इंटरप्ट किया, बोले, मिस्टर एन के जैन, दिस टॉपिक बिलोंग्स टू हेमचंद जी, यू प्लीज़ कम टू योर टॉपिक। उनका टॉपिक था इंडिया में लॉ कानून क्या है, कुछ उसके बारे में, ठीक है, आई डोंट नो मच अबाउट फिलॉसफी, ऐसा करके बोले। बाद में मेरा 1.5 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे लेना पड़ा, वो लोग बिल्कुल रिसर्च स्कॉलर थे, और फिर 2 शब्द मेरे माइंड में आए, वो मैंने इसमें डाले हैं प्रोलॉग में, इंग्लिश वाले इसमें समय सार। 2 थ्योरीज हैं वर्ल्ड में, 1 क्रिएटर गॉड थ्योरी और दूसरा है नो क्रिएटर गॉड थ्योरी, है हाँ। तो इस तरह से ये जीव अपने को समझ रहे, बहुत भाग्यशाली है, यहाँ पर तुम्हारे भाग्य विधाता तुम हो, तुम जानो तुम्हारे, तुम्हें घूमना फिरना है कि सिद्धालय जाना। तो अभी तो इतने यहाँ पर करते हैं, समाप्त हो गए समय, कल इसको बढ़ाएंगे। बस ये गाथा लेकिन याद रखनी जिनवाणी।